भारत और सिंगापुर ने आपसी रिश्तों को बढ़ाने पर जोर दिया है। गुरुवार को सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत सिंगापुर के संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। दोनों नेताओं ने बैठक के दौरान कई अहम समझौतों पर सहमति भी जताई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर को भारत का महत्वपूर्ण साझेदार बताया।
सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम आसियान के साथ सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के जॉइंट विजन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
दोनों देशों ने तकनीक, रक्षा, व्यापार, युवा सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने का फैसला लिया है। निर्णयों के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं,
हमने तय किया है कि एआई, क्वांटम और अन्य डिजिटल टेक्नोलॉजीज में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। आज स्पेस सेक्टर में हुए समझौते से अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र सहयोग में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमने निर्णय लिया है कि हमारे युवाओं को उनके टैलेंट को जोड़ने के लिए इस साल के अंत में इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन का अगला राउंड किया जाएगा।
और अब चर्चा जीएसटी व्यवस्था में किए गए व्यापक सुधारों की। जीएसटी परिषद ने टैक्स स्लैब को 4 से घटाकर 2 कर दिया है। दैनिक उपभोग की अधिकांश वस्तुओं को 5% के स्लैब में रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सुधारों को आजादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार बताया है। उनकी पार्टी भाजपा ने भी जीएसटी में हुए बदलाव को जनता के हित में बताया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा इस बारे में कहते हैं,
टूथपेस्ट, साबुन, तेल से लेकर गाड़ी, मोटर इत्यादि तक, टीवी, फ्रिज से लेकर पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, बच्चों के नोटबुक, ये सारी चीजें, एक है ना, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, लगभग शून्य पे लाके खड़ा किया गया है जीएसटी। इस पे ये हमारी आम जिंदगी को बदलता है। ये केवल एक रिफॉर्म्स नहीं है, रिफॉर्म तो एक अंग्रेजी शब्द है, ये खुशियों का बयार है।
संबित पात्रा ने कांग्रेस सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि तब पानी पर भी अधिक टैक्स लगता था।
जिस पर 27% का टैक्स था बॉटल मिनरल वाटर पे वैट के माध्यम से, जब वैट का जमाना था, जब गांधी परिवार का जमाना था, तो 27% टैक्स लगता था बॉटल मिनरल वाटर पे, और आज 5% टैक्स लगता है जीएसटी पे।
कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार पर पलटवार किया है। सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि उसे सही जीएसटी को लागू करने और समझने में 8 साल का समय लग गया। आपको बता दें कि 2017 से लागू हुए जीएसटी को कांग्रेस पार्टी गलत तरीके से लागू करने का आरोप सरकार पर लगाया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे छोटे और मझोले व्यापारियों के विरुद्ध बताते हुए गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया था। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी की सलाह को मानने में सरकार ने 8 साल बर्बाद कर दिए। कांग्रेस पार्टी टैक्स दरों की कई श्रेणियों की बजाय केवल एक श्रेणी की ही मांग करती रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा इस बारे में कहते हैं,
5 स्लैब्स 6 स्लैब्स हकीकत तो यही थी ना, फिर तभी तो आवाज उठाई राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। 9 साल बाद माना, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें नहीं मालूम कि वाकई इनकी क्या समझ कम है कि इनको 9-10 साल लग जाते हैं। किसानों के मामले में 3-4 साल लग गए राहुल जी जो कह रहे थे, फिर मानना पड़ा। हर चीज वो यू टर्न लेते हैं, लेकिन यू टर्न में 9 साल कैसे लग गए इनको, तो या तो समझ कम है या घमंड बहुत ज्यादा है, दोनों में से एक।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को जोरदार हंगामा हुआ है। सदन में विपक्षी भाजपा विधायकों और सत्ताधारी टीएमसी विधायकों के बीच टकराव हुआ। बाद में कुछ उग्र भाजपा विधायकों को मार्शल के द्वारा सदन से बाहर कर दिया गया। कुछ विधायकों ने चोट आने की शिकायत भी की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन में भाजपा पर हमला बोलते हुए उसे वोट चोर करार दिया। भाजपा ने भी राज्य सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी के व्यवहार की आलोचना करते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया कहते हैं,
पश्चिम बंगाल का हर नागरिक कह रहा है जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता अराजक बनर्जी जैसा होता है। जो कार्य वो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं कर पाती भारतीय जनता पार्टी को हराने का, वो कार्य वो विधानसभा पटल पर खड़ी होकर अमर्यादित भाषा बोलकर, संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनको गाली देकर सोचती है वो पूरा कर रही है। ये चिंताजनक है, अशोभनीय है, अमर्यादित है।
अंत में चर्चा मौसम की। उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में इस साल मानसूनी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पंजाब भी इस साल मौसम की मार से परेशान है। बाढ़ की वजह से राज्य में 40 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों मवेशियों की जान भी गई है, फसलों को भी अत्यधिक नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने राज्य को हर संभव मदद देने की बात कही।
संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब की जनता के साथ है। मुझे प्रधानमंत्री जी ने भेजा है, स्थिति का जायजा लेंगे, गांव में पहुंचने की कोशिश करेंगे, जनता से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद जो स्थिति यहां पंजाब की है उसके आकलन करने के लिए दो केंद्रीय टीमें भी आज आ गई हैं।
हरियाणा और दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। राजधानी दिल्ली और NCR के कई इलाकों में पानी घुसने से लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। गुरुवार को यमुना नदी का पानी कई और निचले इलाकों में घुस गया। इसके साथ ही शहर में पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।